నమో మహాబలాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః తప్త కాంచన గౌరాంగి శ్రీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసృతేభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాశాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ
कृताभिषेक नैयमिका आवश्यकः स्नान किए और नित्य नैमित्तिक तिलक आदि कर्म किए आवश्यकः मूत्रोत्सर्ग आदि किए और ब्रह्माक्षराम दिव्य अक्षर ओंकार अभिग्रणानः गुनगुनाते हुए जप करते हुए मुहूर्त त्रयम् तीन मुहूर्त तक उदकांते जल के निकट उपविवेशा बैठे तो इसके पहले राजर्षि भरत के भक्ति उत्कर्ष का वर्णन किया गया अपने भवन में और वन में दोनों स्थानों पर कृष्ण भक्ति का अनुशीलन उन्होंने किया और वन में उनकी भक्ति चरम शिखर पर पहुंच गई। वे क्षण भर भी भगवान को भूल नहीं पाते थे, निरंतर शरीर में पुलकावली रहती थी, आंखों में आंसू और हृदय आनंद की बाढ़ में छाया रहता था। इसे प्रेम विकार को राजर्षि भरत अपने जीवन में भगवत सेवा में एक अंतराय मानते थे, यद्यपि यह बहुत ऊंची स्थिति थी। तो उसके लिए गायत्री का सहोदर मंत्र जपते थे। अब इस आठवें अध्याय में भक्ति योग से इनके पतन का इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है। कल इनके भक्ति के विकास का वर्णन किया गया, आज ह्रास का वर्णन किया गया, किस तरह ये गिरे। वास्तव में इसमें भगवद इच्छा कारण है। भगवान अपने प्रिय भक्तों को भक्ति योग में चढ़ाकर या गिरा करके जगत को सिखाते हैं कि देखो ऐसा करने से भक्ति बढ़ती है और ऐसा करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। सावधान करने के लिए हम लोगों को भगवान ने राजर्षि भरत को इस तरह किया, अन्यथा उस स्थिति से भक्ति योग में पतन नहीं होता है, यह नियम है। भक्ति योग में पतन नहीं होता है। यहां तक कहा गया भागवत में कि धावन निमिल देवार ने त्रेन स्खलित न पते दिया। यह भक्ति योग इतने सुगम और स्वाभाविक है कि इसमें कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है फिर भी न स्खलित न पते, न वो स्लिप करता है, फिसलता है और न तो गिरता है, आंख बंद करके भी चले फिर उस उच्चतम धरातल पर पहुंचा हुआ भक्त कैसे गिर सकता है। लेकिन भगवान दूसरों को सिखाते हैं अपने भक्तों को गिराकर इस तरह से। इसमें स्पेशल कृष्ण की इच्छा कारण है। तो जो भी हो, किस तरह भक्ति योग से गिरे इस आठवें अध्याय में वर्णन किया गया है। अष्टमे भजतो विष्णुं तस्य कर्मांतरायतः येन रक्षा प्रसक्तस्य जातमेणत्वमीयते। इस आठवें अध्याय में यह दिखाया गया है कि भगवान विष्णु का भजन करते हुए दूसरे कर्म से महाराज राजर्षि किस तरह गिर गए और कौन सा कर्म था। येन रक्षा प्रसक्तस्य, येन का अर्थ है हरिण, हरिण की रक्षा में इतना प्रसक्त हो गए, इतना अधिक आसक्त हो गए कि अंत में उन्हें हरिण का देह लेना पड़ा। जातम एणत्वम ईरियत ये कहा गया। इसलिए भावार्थ दीपिका में श्रीपद श्रीधर स्वामी सावधान करते हैं, कृपया भी कृत संग पतना एव जोगिना। यदि कृपा करके भी किसी में आसक्ति किया जाए, दया करके भी आसक्ति किया जाए किसी का हित करने के लिए, तो वह भी भक्त के पतन का कारण हो जाता है। दया करके भी आसक्ति की जाए वो भी पतन का कारण है। दया करे लेकिन आसक्त न हो जाए। इति प्रदर्शन न भरत एंड पोषण, इस प्रकार से यह दिखाते हुए राजर्षि भरत के द्वारा हरिण पोषण की कथा कही जा रही है। और श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय के उपक्रम में कहते हैं कि अष्टमे भरतस चक्रे मृग पालन लाल ने तद बीजोगे न तत्चेता प्राप्त तद देहता नदी। आठवें अध्याय में मृग के पालन लालन में आसक्त होने के कारण और उसके वियोग में शरीर छोड़ने के कारण राजर्षि भरत को तद देहतां मृग देहता प्राप्त हुई, मृग देह प्राप्त हुआ। इसलिए दयामपि त्यजेत भक्ति बाधिनी मिति दर्शन। यदि भक्ति बाधिनी भक्ति में बाधा देने वाली हो तो दया भी छोड़ देनी चाहिए, दया नहीं करनी चाहिए। दया हो बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कृष्ण भक्ति में यदि वह दया बाधक है तो दया छोड़ देनी चाहिए, दया नहीं करनी चाहिए। तम मृगम पोषयामास कृष्णश चतुर्मान बुद्धि। यही दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने यह किया। कृष्ण चतुरिमा अम्बुधि, कृष्ण चातुर्य के अम्बुधि है, सागर है। भगवान में बहुत चतुराई है, जानते हैं कि भक्त की भक्ति को कैसे पोषा जाएगा। तो वही एक मृग को सामने करके वो राजर्षि भरत की भक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। तो शुरू में तो मृग में आसक्त हुए राजर्षि भरत, लेकिन इसके बाद वे सावधान हो गए और सर्वदा अनुताप में जलते रहते थे, पछताते रहते थे कि हाय हाय मैं कितना गिर गया, कृष्ण की भक्ति से मैं च्युत हो गया। तो उस समय उनकी वो दशा हुई जैसे अग्नि में सोना जलाया जाता है तो और तप्त हो जाता है, तप्त कांचन गौरांगी, तप्त हो जाता है, पीला पीला चमकने लगता है सोना। उस तरह से राजर्षि भरत जब हरिण शरीर में हुए और हरिण शरीर के बाद जब ब्राह्मण शरीर में हुए तो उन्हें इतना पश्चाताप था अपने पतन के कारण कि बहुत निखर गए सोना की तरह। इतना सावधान थे कि ब्राह्मण शरीर में सारा ज्ञान होते हुए, अपने पूर्व जन्मों की कथा याद होते हुए, सब कुछ भी वे अपने को बिल्कुल बेवकूफ जैसा रखते थे, गुंगा बहरा जड़ जैसे। वे कभी ठीक से वस्त्र नहीं पहने, केवल कमर में वस्त्र पहने रहते थे बस, जान बुझ करके। एक बार हम गिर चुके थे हरिण में आसक्त होकर के, तो वे सोचते थे कि यदि मैं बहुत पढ़ लिख जाऊंगा, ठीक से कपड़ा पहनूंगा, योग्यता दिखाऊंगा, उस बार तो हरिण में आसक्त हुआ था, इस बार हरिण नयनी में आसक्त हो जाऊंगा तो फिर हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। वे इस तरह से सोच रहे थे, बहुत बहुत सावधान थे। तो यही कथा इसमें दिखाई गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अनुतापां बुधौ क्षिप्त्वा स्वप्रेमाब्धौ निमज्जयन्। कृष्ण ने राजर्षि भरत को पहले अनुताप के सागर में डाल दिया पश्चाताप के, और बाद में स्वप्रेमाब्धौ निमज्जयन्, बाद में अपने प्रेम के समुद्र में डुबाया। पहले अनुताप, कोई चीज हम लोग देखते हैं जैसे गुलाब जामुन है, पहले पकाया जाता है घी में, लेकिन इसके बाद सीरा में डाल दिया जाता है, बहुत मीठा हो जाता है। तो पहले पश्चाताप की आग में इनको जलाया गया मृग देह में, और बाद में अपने प्रेम सुधा सिंधु में भगवान ने सिक्त कर दिया। तो यह कृष्ण की एक शैली है। हम अपनी कृष्ण भक्ति को जितना बढ़ाना चाहते हैं या जो उपाय जानते हैं उससे बहुत अधिक कृष्ण चाहते हैं कि हमारे प्रेम बढ़े, और उपाय भी हमसे अनंत गुना ज्यादा जानते हैं किस तरह प्रेम बढ़ाया जाएगा। क्योंकि वास्तव में भक्तों के हृदय में जो कृष्ण प्रेम होता है उसके वास्तविक आस्वादक हैं भगवान कृष्ण, वही उसके विषय होते हैं। कल मैं कह रहा था कि भक्ति भगवान और भक्त दोनों को सुख देती है, तो भगवान स्वयं ही यह सुख लेने के लिए भक्तों के हृदय में भक्ति पोषना चाहते हैं। जैसे मालिक वृक्ष लगाता है वो फल खाने के लिए या फूल के लिए, उस तरह कृष्ण भक्तों के हृदय में भक्ति पोषते हैं और जानते हैं कैसे पोषा जाएगा। शायद राजर्षि भरत के देह में राजर्षि भरत इतना और अधिक गाढ़ भक्त नहीं हुए होते जितना वे हरिण शरीर में हो गए। यहां तक उस हरिण शरीर को उन्होंने त्याग दिया, आत्महत्या किया पानी में डूब कर, इसके बाद ब्राह्मण शरीर मिला, उसके बाद वे भगवान के धाम में चले। तो यह प्रसंग यहां दिखाया गया है एकदा शब्द प्रारंभ में। संस्कृत में दा का अर्थ होता है समय, जैसे एकदा सर्वदा, सर्वदा माने सब समय, कदा किस समय, जदा जिस समय, तदा उस समय। ये दा शब्द का अर्थ होता है समय, और एकदा मतलब एक समय, एक समय। तू शब्द यहां एक महत्वपूर्ण शब्द है। तू अर्थ अब हाय के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। इतना बड़ा भक्त अब पतन की ओर जाएगा। इसके लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। जब प्रसंग का अंतर होता है और खास करके भाव का अंतर होता है तो तू शब्द लगाया जाए। एकदा तो महानद्याम, एक समय राजर्षि भरत महानदी गंडकी में कृताभिषेक स्नान किए। स्नान से पहले आवश्यक कर्म किए। आवश्यक कर्म का अर्थ होता है उसको अर्थ प्राप्त कर्म करते हैं। कोई नियम नहीं है लेकिन वो शरीर को शुद्ध रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। उसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, मूत्र का फोर्स या मल त्यागने का फोर्स, उसको आवश्यक। और नित्य नैमित्तिक कर्म का अर्थ होता है जो रोज नियम के अनुसार करने चाहिए, जैसे तिलक करना और भी जो पूजा पाठ होता है उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और आवश्यक कर्म का अर्थ होता है जो अपने आप प्रकृति द्वारा फोर्सली आ जाए। स्नान करना पड़ता है, खास करके मूत्रोत्सर्ग करना पड़ता है, मलोत्सर्ग करना पड़ता है, ये आवश्यक कर्म। इसको अर्थ प्राप्त संस्कृत में कहते हैं कि हमारे बिना चाहे ही यह कर्म करना होगा। इसलिए जहां भी आदमी है वहां पर उसके बाथरूम की व्यवस्था है। और आजकल तो अटैच्ड बाथरूम हो तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं। जो भी हो इस तरह से आवश्यक अर्थ समझना चाहिए। तो आवश्यक कर्म करके और नैमित्तिक कर्म करके और इसके बाद अभिषेक स्नान करके नदी के तट पर ही तीन मुहूर्त तक बैठे रहे, बिल्कुल एकांत था, अपना जप कर रहे थे। क्या करते हुए बैठे थे? ब्रह्माक्षरम अभिग्रणान, जप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। अभिग्रणाना, ग्रणाना शब्द का अर्थ है गुनगुनाना, कुछ मंद स्वर से बोलना। जप कर रहे थे और अभी अभी का अर्थ है पूरी तरह से आनंद के साथ जप कर रहे थे। ब्रह्माक्षरम प्रणव को कहते हैं, ओम एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान गीता में कहते हैं कि जो ओम ये अक्षर है ये ब्रह्म है, जो स्पिरिचुअल चिन्मय। तो ओम को ब्रह्माक्षर कहते हैं, अथवा गायत्री मंत्र को भी ब्रह्माक्षर कहते हैं, अथवा भगवान के विषय में कोई भी जो मंत्र है वो ब्रह्माक्षर है, वो मायाक्षर नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है। गुरु के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान का जो नाम है वह वैकुंठ से आया है, गोलोक से। जैसे हम लोग यहां भी शब्द सुनते हैं, बीबीसी लंदन का शब्द यहां सुनाई पड़ता है, दिल्ली का शब्द यहां सुनाई पड़ता है, ये रूप भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से दिव्य शब्द गोलोक वृंदावन से आया है। तो भगवान का जो नाम है कृष्ण गोविंद हरि इत्यादि, ये शब्द गोलोक वृंदावन से आया है, इस जगत की उपज नहीं है। तो इसको ब्रह्माक्षर कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है स्पिरिट, स्पिरिचुअल। और इसके ठीक विपरीत शब्द है माया, मैटेरियल शब्द। तो हम लोगों के लिए यहां पर ब्रह्माक्षर का मतलब है महामंत्र। अनादि काल से भक्त भगवान का नाम जप करके सिद्धि पाए हैं। इस समय कलि संतों उपनिषद के अनुसार हम लोगों के लिए महामंत्र ब्रह्माक्षर, और इसको गुनगुनाना चाहिए, जपना चाहिए। तो जहां भी मनुष्य जपे एकांत सावधानी के साथ मन लगाकर, तो इस तरह वो जप कर रहे थे। मन पूरा भगवान में लगा था, वाणी लगी थी, आनंद में विभोर थे। अब देखिए कृष्ण इनके सामने क्या दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से जप कर रहे थे। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाभ्यासम एका एवं जगाम। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी राजन संबोधित कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, जिसका अर्थ है कि हे महाराज, इतने महान भक्त के जीवन में ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिससे उनकी भक्ति छूट गई, वे गिर गए, आप सावधानी से इस कथा को सुनिए। राजन शब्द संबोधित किया जा रहा है। हे राजन, तदा तदा मतलब उस समय, कब, जप के अवसर पर, जब जप कर रहे थे किसी शिला पर बैठकर नदी के किनारे, कोई मनुष्य नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, मन वाणी सब कुछ कृष्ण में लगा था। तदा पत्र, तदा मतलब उस समय, उस जप के अवसर पर पत्र नदी तट पर पिपासया प्यास से व्याकुल होकर जलाशय के नजदीक नदी के समीप एकाएव हरिणी उपजगाम, एक हरिणी आई। एकाएव शब्द कह रहे हैं, अकेले आई। हरिण झुंड में चलते हैं, हरिण को जुथचर कहते हैं, सिंह अकेला चलता है, उसे एक चर कहते हैं। सिंहन के लेहड़े में, सिंह कभी झुंड में नहीं चलते। संस्कृत के श्लोक में बताया गया है कि सिंह के पास न मंत्री रहता है न सेवक रहते हैं, फिर भी वो जंगल का राजा रहता है। कोई उसको चामर दुलाने वाला नहीं रहता है और कोई मुकुट भी पहनाने वाला नहीं जाता है, न उसका राज्य अभिषेक होता है, लेकिन ये है उसका प्रताप, अपने आप जंगल का राजा है। कोई मंत्री ऐसे भी नहीं रहता, तो एक चर होता है सिंह, लेकिन हरिण हमेशा झुंड में चलते हैं, जुथचर। लेकिन वह जो हरिणी थी, कृष्ण सार मृग की पत्नी, वह अपने जुथ से बिछुड़ गई थी, संग अकस्मात छूट गया। तो पहले तो जंगल में बहुत देर तक अपने सहचरों को खोजती रही, मृग के झुंड को खोजती रही, लेकिन नहीं मिले। खोजने में उसे बहुत जोर की प्यास लग गई। हरिण को प्यास लगी और वो गर्भवती थी, इसलिए सुखदेव को स्वामी एकाएव शब्द का प्रयोग करें। कभी अकेली नहीं घूमी थी हरिण या हरिणी, अकेले नहीं चलते हैं, लेकिन उस दिन वो एकाएव अकेले थी और प्यास के कारण नदी के तट पर आई, और वहीं पर जहां राजर्षि जप कर रहे थे। देखिए भगवान का ट्रिक क्या करते हैं, जो अपने दुस्त्य अपने शरीर से उत्पन्न पुत्रों को छोड़ चुके हैं, अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, राज्य को छोड़ चुके हैं, उनके सामने यह दृश्य दया का दृश्य उपस्थित किया जा रहा है। अब देखें क्या होगा। तो आए जल पीने के लिए उपजगा, यहां उप शब्द है, उपकार थे निकल, जहां राजा से बैठे थे उसके बिल्कुल सटे हुए बगल, क्योंकि राजर्षि भरत से या किसी भी वनवासी साधु महात्मा से जंगल के पशु भय नहीं करते, ये व्याध को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन साधु महात्मा को देखकर उनके आश्रम के समीप आकर बैठते हैं। यहां तक कि बाघ और सिंह भी आकर के बैठते हैं। तो हरिणी आई और जेव ही वो जल पीना चालू की, उसी समय बहुत जोर से सिंह नाद हुआ, सिंह दहाड़ा और निकट ही तया पेतीय माने उदके ताव देवा अविदूरे नदतो मृगपते रुन्नादो लोक भयंकर उत्पत। तया उदके पेतीय माने, उसके द्वारा जब जल पिया जा रहा था, जेव ही अभी एक दो घुट पी थी और पी रही थी, और पहले भी वो चकित चकित देख रही थी, हरिण के नेत्र ऐसे भी बड़े बड़े और चंचल होते, वो चारों तरफ देख रही थी, और जब ही पानी पीना चालू की तब ही जोर से सिंह दहा, लोक भयंकर, जिस नाद को सुन करके मनुष्य का समुदाय भी भयभीत हो जाता है। घर में रहने वाले लोग यदि सिंह नाद सुन लें तो वे डर जाएंगे। ऐसा हम लोग जानते हैं, हमने सुना है कि सिंह की दहाड़ सुनकर या सिंह को देखते ही धोती में पेशाब हो गया था एक आदमी हमारे, और हाथ में राइफल लिए थे, आएगा तो हम मारेंगे। मंच पर बैठाया गया था जंगल में, और बाघ को जब ही देखे तो स्तब्धता आ गई, वो राइफल भी छूट गया और उन्हें स्नान करने जाना पड़ा था। क्या मारे, इतना भयंकर होता है आवाज सिंह की, इसको लोक भयंकर होता है। लोक का नाम भयंकर, लोक भयंकर, लोक भयभीत हो जाते हैं। ऐसे मृगपति का पशुपति, मृगपति सिंह को पाते, सिंह का नाद हुआ भी उन्नाद, उच्च स्वर से सिंह गर्जा पूरी शक्ति लगाकर, और निकट ही अभिदूरे, अभिदूरे मतलब बहुत दूर नहीं, निकट ही दहाड़ा, और तावत एवं जेम ही वो जल पी रही थी उसी समय, तावत एवं ये शब्द कह रहे हैं, जेम जल पी रही थी तेम लोग भयंकर आवाज है। इस संसार में वास्तव में एक तो जीव भूख प्यास से व्याकुल रहता है, वो कुछ पीना चाहता है, खाना चाहता है, लेकिन उस पर भी अनेक बाधाएं, बेचारे जल पी नहीं सकी। एक तो जुथ जिससे बिछुड़ गई थी उसका दुख था, वन में भ्रमण की थी उससे परिश्रम हुआ था, प्यास से व्याकुल थी वो, और ऊपर से सिंह की दहाड़, पानी पीना छोड़ दी तुरंत, और वह वो भागने के लिए सोचने लगी, तो मैं कहीं भाग करके प्राण बचाओ। तमुपश्रुत्य सा मृग वधु प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरा अपनी हरि भयाभिनिवेश व्यक्त हृदय पारिप्लव दृष्टि जगत तृष्णा भया सहसा एवं चक्रा। सब प्रकृति विक्लवा मृग वधु सा प्रकृति विक्लवा, सामान्य वह प्रकृति विक्लवा स्वभाव से ही चंचल मृग की पत्नी, मृग की पत्नी या मृग स्वभाव से ही चंचल होते हैं, इसको प्रकृति विक्लवा कहते हैं, घबराते हैं। वन में अनेक भय होता है हरिणों पर, वास्तव में मनुष्यों में भी बहेलिया लोग हरिण को मारना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और सिंह आदि भी देखते ही खा जाते हैं, तो स्वभाव से ही विकल रहते हैं, कमजोर पशु है हरे, तो स्वभाव से ही वह विकल थी, और उस पर भी झुंड से बिछुड़ गई थी। और मृग वधु, मृग वधु का अर्थ है कि वह संसार मृग की प्यारी पत्नी थी, जब अपने पति के साथ होती है तो वे आपस में मिलते हैं, सहलाते हैं, सुख से रहते हैं, पशु भी आनंद से रहते हैं जंगल में, लेकिन वो तो अपने झुंड से बिछुड़ गए थे। तो तब उपस्रुत्य उस नाद को निकट ही वो सुने, और सुन करके चकित निरीक्षण, पानी पीना छोड़ करके लगी देखने, चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, भयभीत होकर देखने लगे। सुतराम अपनी इतना ही नहीं, हरि भयाभिनिवेश व्यग्र हृदय, हरि मतलब सिंह, हरि यहां सिंह के लिए कहा गया, सिंह के भय से अभिनिवेश व्यग्र हृदय, उसके हृदय में भय का, सिंह का भय छा गया, वो अब आएगा मुझे खा जाएगा, तो आएगा मुझे खा जाएगा, इस भय में पड़ गई, और हृदय धक धक करने लगा। व्यग्र हृदय का अर्थ है, व्यग्र हृदय का अर्थ होता है जब सांसें चलने लगती है, जब मनुष्य का अनुभव है भय होने पर कलेजा दहलने लगता है, कांपने लगता है, ऐसे हृदय व्यग्र हो गया, कांपने लगा कलेजा। और पारिप्लव दृष्टि, पारिप्लव का अर्थ है परिभ्रांत, नेत्रों में घबराहट छा गई, भय होने पर नेत्रों की दूसरी दशा हो जाती है, भयभीत हो गई, पारिप्लव दृष्टि इसको कहते, परिभ्रांत नेत्र। अगत त्रिषा एवं, त्रिषा मतलब प्यास, अगत मैंने नहीं गई थी, अभी प्यास बुझी नहीं थी, थोड़ा ही पानी पिया था, तब तक भयात सहसा उच्चक्रा में, तो भय से सहसा वो उचक गई, भागी भय के कारण, तो इतना भय हुआ कि भय के कारण उसका जो गर्भ था पेट में वो अपने स्थान से विचलित हो गया। अक्षय भय के कारण ऐसा होता है, यह अनुभव है लोक में। एक बार मैं भागवत की कथा कह रहा था, तब तक एक छोटा बच्चा था, वो बहुत हंस रहा था, भागवत की कथा में हंस रहा था, तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं केवल उस लड़के को डांट दिया। प्रथम बार हमारी कथा में आया था मेरे गांव पर, तो मैं कह दिया खड़ा हो जाओ। अब तो बच्चा खड़ा हुआ, कभी समाज में खड़ा नहीं हुआ था, बहुत लोग भरे पड़े थे, वो खड़ा हुआ, तब तक वो हर 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 पेशाब करने लगा पैजामा, उन्होंने कहा ले जाओ इसको नदी में स्नान कराओ, और उसके मन में बिना मतलब भय हो गया,
बच्चा था, भय हो गया, तो भय के कारण पता नहीं आंखों में कुछ ऐसी दशा हो जाती है कि वे मल मूत्र को रख नहीं पाते। तो इसी तरह से गर्भ होती है, अधिक भय हो जाए तो गर्भ अपने स्थान से विचलित हो जाता है। इसीलिए गर्भवती माताओं को बिल्कुल सुख में रखना चाहिए, आनंद में रखना चाहिए। कभी क्रोध न आवे, कभी भय न आवे, कभी शोक न आवे, कभी शोक का समाचार भी हो तो गर्भवती स्त्री को कभी नहीं सुनाना चाहिए, दूर रखना चाहिए, उसको नहीं सुनाना चाहिए। गर्भ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सर्वदा स्पिरिचुअल वातावरण में रखना चाहिए उसे सुख के साथ। तो सुदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्या उत्पतन त्या, जब ही वो उछली नदी पार करने के लिए, तैरने के लिए, तस्या उत्पतन त्या अंतर्वतनी, जब वो उछले तो एक तो वो अंतर्वतनी थी, अंतर्वतनी मतलब गर्भवती। तो उरु भय अवगलित गर्भ, उरु भय अधिक भय के कारण अवगलित, उसका गर्भ है स्थान से विचलित हो गया। गर्भ का बच्चे का रहने का एक स्थान होता है, वहां से वो हट गया अधिक भय के कारण। इतना ही नहीं, योनि निर्गत, वो बच्चा उस हरिणी की योनि से बाहर होकर के स्रोत से निकल पाता, जल की धारा में गिर गया। और राजा भरत जप कर रहे थे। अब यहां प्रश्न चिन्ह होता है, करें क्या? अपना जप थोड़ी देर के लिए छोड़ करके उस हरिणी के बच्चे को बचावे या जप करते रहे? धर्म की गति वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। क्या किया जाए? अगर कोई कहे कि नहीं, उन्हें बच्चे को उठाना ही चाहिए, रक्षा करनी ही चाहिए, लेकिन रक्षा करने के कारण तो ये दशा होगी जिसे हम लोग सुनेंगे बाद में। और ये कोई कहे कि नहीं, कुछ भी हो, कोई मरे जिए, कुछ भी, अपना हरे कृष्ण करते रहते ठीक रहता है, तो यह सुनने में बड़ी कठोर बात लग रही है कि नहीं? वैष्णव वो है जो पर दुखी दुखी होता है, जीव पर दया करनी चाहिए। तो दो मिनट के लिए जब छोड़ करके यदि उस बच्चे को निकाल दिया जाए जल से बाहर, तो इसमें कौन भक्ति की हानि हो जाएगी? लेकिन इसी ने इनके जीवन को बिल्कुल भक्ति शून्य कर दिया। वो क्या किया जाए? इस तरह एक दीन स्थिति वहां भगवान ने उत्पन्न कर दी भक्त के सामने। और जब वो जल पीने आई, उसी समय से उसको देख रहे थे, देखे कि बेचारी जल पीने आई है और सिंह की दहाड़ हो रही है और एक छलांग मारी, उसका गर्भ पानी में गिर पड़ा। अभी नवजात शिशु गर्भ से, वो भी गर्भ का समय पूरा नहीं हुआ, असमय में गर्भस्राव हो गया और वह असहाय बच्चा जो तैरना नहीं जानता था पानी की धारा में, निपपात, यहाँ पपात शब्द नहीं है, नीप पात है, नीप पता तो मतलब ऊपर जब छलांग मारी तो वो गिरा जल की धारा में, नितरम पपात, बहुत बुरी तरह से वो बच्चा पानी की धारा में गिरा। तो गिरने की चोट लगी और दूसरे अब वो तैरना नहीं जानता था, बहने लगा। भगवान की शक्ति से गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। देखिए भगवान की व्यवस्था है, पता नहीं कैसे वो जिला देते हैं बच्चे को। यहां 10 महीने 9 महीने हम सभी गर्भ में रहकर आए, वहां जीवित रहे, भगवान ने भोजन भी दिया, लेकिन असमय में यदि गर्भ बाहर हो जाए तो बच्चे जी नहीं सकता है, अति भय अति शोक से गर्भपात हो जाता है। तो नवजात मृग शिशु जल की धारा में है और राजसी की हाथ में माला है, वे जप कर रहे हैं भगवान का, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरिणी की दशा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि तत् प्रसव उत्सर्पण भय खेदातुरा स्वगणेन विजुज्यमाना कस्यांचि दर्यां कृष्णसार सती निपपात अथ च ममार। तो असमय में प्रसव होने से, तत्प्रसव ऐसा प्रसव होने से, और उत्सर्पण ऊपर छलांग लगाने से, और अतिशय भय के कारण, और अपने गणों से, अपने जूथ से बिछुड़ने के कारण बहुत आतुर थी, दुखी थी, इस कारण से जब वो नदी को पार कर गई तैर करके हरिणी, तो असमय में गर्भस्राव हुआ था, दुख था, झुंड से बिछड़ी थी, वो जा रही थी, चला नहीं गया उससे, वो जाते जाते पर्वत की खाई में गिर पड़ी। दरी कहते हैं उसको, दरिया, जहां दोनों ओर से शिखर हो और बीच में गड्ढा होता है उसको दरी कहते हैं, खोह कहते हैं, और गुफा तो जो पहाड़ों के बीच में रहते उसको गुफा कहते, तो दरी में गिर गई, बहुत ऊंचे पर्वत से नीचे गिर पड़ी, चला नहीं गया। दरिया में, मतलब पहाड़ की खो में गिर पड़ी और ममार मर गई। इसके पहले की बात बता रहे हैं, अभी तो बाद में जाकर के मरी, लेकिन जब गर्भ पानी की धारा में गिर पड़ा तब राजर्षि पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम तु एड़ कुणकम कृपणम स्रोतसा अनुयमानम अभिवीक्ष अपविद्धम बंधु इव अनुकंपया राजर्षि भरत आदाय मृत मातरमिति आश्रम पदम अनयत। भरत जी के लिए राजर्षि शब्द का प्रयोग किया गया है। राजर्षि थे, आपने सुना था कि बड़े स्नेह से प्रजा का पालन उन्होंने किया था, पुत्र की तरह, पौत्र की तरह, मतलब पिता पितामह की तरह प्रजा का पालन किए थे। उनका हृदय बहुत मृदु था, कोमल था, तो इस दशा को देखकर राजर्षि का हृदय अनुकंपा से भर गया। अनुकंपा, कंप का अर्थ है कांपना, जब किसी का दुख देख करके कलेजा कांपने लगे, द्रवीभूत हो जाए, तो उसको अनुकंपा कहते हैं। किसी के दुख को दूर करने की इच्छा हो जाना, तो स्वभाव से ही नख से सिख तक दया से भरे थे। तो उन्होंने देखा स्रोतसा अनुपूह्य मानव, मृग का बच्चा स्रोत द्वारा, जल की धारा द्वारा उह्य मानव बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है, वो डूबा है उसमें और बहाया जा रहा है। कृपणम, कृपण का अर्थ असमर्थ, वह तैर नहीं सकता था, बच नहीं सकता था अपने अपने प्रयास, इसको कृपण कहते हैं। दीन, अपविद्धम, अपनी मां द्वारा त्यक्त हो चुका था, अपने झुंड द्वारा, अपने पिता द्वारा, अपनी मां द्वारा वो त्यक्त थे, अपविध मतलब त्यक्त। अभिवीक्ष, इसको अच्छी तरह से देखकर राजा श्री भरत के हृदय में उसी तरह अनुकंपा उत्पन्न हो गई जैसे लगा कोई उसका अपना बंधु हो, जैसे अपने पुत्र को संकट में देखकर पिता का हृदय द्रवित हो जाता है, पुत्र को बचाना चाहता है, उस तरह से राजर्षि के हृदय में अनुकंपा उत्पन्न हो गया। यहां बंधु शब्द का अर्थ है पिता या माता, इस संसार में जीव के सबसे बड़े बंधु हैं माता पिता, वो बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं बच्चों की, उनको बंधु कहते हैं, और माता पिता के बाद ही दूसरा कोई बंधु है। तो बंधु युवा, जैसे पिता आदि अपने बच्चे का हित करना चाहते हैं, दया करते हैं, इस तरह से राजर्षि भरत के हृदय में अनुकंपा उत्पन्न हो गई, और अनुकंपा पूर्ण हृदय से वे सोचने लगे, जब गोद में उठाए बच्चे को जल में तुरंत चले गए, तुरंत जाकर जल में से निकाले और लेकर के अपनी गोद में रखे सहलाने लगे, तो यही बार बार विचार उनके मन में आ रहा था कि मृत मातरम इति, हाय इसकी मां मर गई। जन्म लेने वाले बच्चे का सहारा तो मां होती है शुरू में, बिल्कुल, पिता आदि तो बाद में सहारा देते हैं, इन मां के स्तनों में दूध होता है और बच्चा उसी को पी करके बड़ा होता है, इसलिए इस जगत में बच्चे के पोषण के लिए मां ही सबसे बड़ा सहारा। और मृत मातरम, उस बच्चे की मां तो सामने मर गई, तो राजर्षि भरत ने प्रयास किया, पहले वो जल की धारा में से बच्चे को निकाले, तो निकाल करके वे हरिणी का अनुगमन किए, हरिणी जल से निकाल करके जिधर गई थी तो उसके शरीर से पानी टपकता हुआ गया था, तो राजर्षि गए कुछ दूर कि अगर वो जीवित होगी तो इस बच्चे को दे दूंगा हरिणी को, और अपना वो पिलाएगी, वन में रहेगी जैसे भी, लेकिन वो बच्चे को लेकर के गए तो जाते जाते वे देखे कि हरिणी नीचे गिर पड़ी है और उसके प्राण समाप्त हो चुके। यह देख करके अब इनके हृदय में और अनुकंपा, अब क्या करें, उचित यह था कि वे उसको जल से निकालकर छोड़ देते। भाई जंगल में पता नहीं कौन जीव किसको खाते हैं, अभी तो इसकी रक्षा के लिए तो आए नहीं है, तो आए हैं कृष्ण भक्ति के लिए। कितने सिंह कितने हरिण को खाए होंगे, कितना गर्भ गिरा होगा, कितने मरे होंगे, लेकिन अब प्रश्न हो गया कि आंखों के सामने हो गया आंखों के सामने हो गया, इसलिए चेतना पर इसका प्रभाव पड़ा। राजर्षि ने अनुभव किया कि यदि मैं इस समय इसकी रक्षा नहीं करता हूं तो यह हमारी भक्ति में भी बाधक हो सकता है। ऐसा विचार होता है और कभी कभी लग भी जाता है। वास्तव में दिनों की उपेक्षा करने से तप खत्म हो जाता है मनुष्य का, दिन ही इनका पालन करना ही चाहिए। लेकिन जब वे हरिणी के पास गए, उन्होंने देखा मृत मात्र, इसकी मां मर गई, तो बार बार सोचने फिर सोचते हैं कि इसको मैं यहां रख करके चला जाऊंगा तो कोई सिंह खा जाएगा, कोई कुत्ता भी खा सकता है, तो जल से निकालने का लाभ क्या हुआ यदि मैं इसको यहीं छोड़ करके चला जाता। अब देखिए माया अब धीरे धीरे चालू हुई और एक के बाद दूसरा कर्म आवश्यक समझ में आने लगा। इति आश्रम पदम अनयम, ऐसा सोच करके कि इसका कोई सहायक नहीं, इसको कोई पोषने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका कुछ पोषण कर दूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा छोड़ दूंगा जंगल में, अपन खाएगा जिएगा, लेकिन अभी आश्रम में ले चलूं। आश्रम पदम अनया, दया करके लाए उस बच्चे। यह है दृश्य का प्रभाव। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक दृश्य लाखों का विषय, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक रस जो हम खाते हैं, प्रत्येक स्पर्श और प्रत्येक गंध हमारी चेतना को प्रभावित करता है। हम जाने या न जाने लेकिन वो प्रभावित हो जाता है। जैसे हम फोन करते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो बिल बन रहा है लेकिन वो बन ही जाता है। हम किसी रूप को देखते हैं ये शब्द को सुनते हैं तो हमारे चेतना को, संस्कार को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है। हम सोच सकते हैं नहीं नहीं हम तो बेदाग हैं, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरा पड़ जाता है। परंतु हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ सकें कि वास्तव में संस्कार पड़ गए। एक साधारण दृश्य का इतना गहरा प्रभाव पड़ा राजर्षि के हृदय पर कि उसने उनके जीवन की धारा को बिल्कुल बदल दिया। इतना प्रभाव पड़ा, सामने रहने पर वास्तव में प्रभाव पड़ता है। यदि समक्ष न रहा जाए, यदि इंद्रियों से विषयों का भोग न किया जाए तो मनुष्य बहुत जल्दी भगवान को पा सकता है। प्रत्येक रूप रस आदि हृदय को प्रभावित करते हैं। मैं जब यहां आया बॉम्बे में इस बार, तो मैं उधर से ही कह चुका था एक भक्त को कि आप हमारा टिकट बना दीजिएगा, मैं 29 को जाऊंगा चंपा रायपुर, और मैं गोपाल कृष्ण महाराज जी से कहा था कि मैं ठीक है आ जाऊंगा, उन्होंने कहा था। और जब मैं यहां आया और लोगों को देखा और कहने लगे भागवत होना चाहिए होना चाहिए, तो स्वाभाविक एक स्नेह उत्पन्न हो गया कि ठीक है होना चाहिए, तो हमारा टिकट अब 17 को। देखने का प्रभाव होता है वास्तव में, नहीं तो लोग भी कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यदि दृष्टि से ओझल हुए तो मन से भी ओझल हो जाते हैं, तो दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब कैकेयी को मंथरा शिक्षा दे रही है तो कहती है अरे मूर्ख कैकेयी, जैसे डांटती है, तुम राजा के वंश में उत्पन्न होकर के भी राजनीति नहीं जानती हो, धिक्कार है तुमको मैं तो राजा के कुल में नहीं उत्पन्न हुई थी फिर भी मैं राजनीति और पॉलिटिक्स जानती थी। तुमको पता है दृष्टि से दूर रहने पर स्नेह नष्ट हो जाता है, आंखों के सामने रहने पर सौहार्द बढ़ता है। वो कहती है कई कई से तो बाला एवं तुम मातुल्यम भरतो नाई तस्तया, बचपन से ही भरत को तो ननिहाल में रखी, मामा के घर में रखती है, कभी राजा दशरथ के दृष्टि के सामने तुमने रखा नहीं, बचपन से ही भरत को रख दिए मामा के यहां, और राम हमेशा दशरथ की दृष्टि के सामने रहे तो स्नेह तो बढ़ेगा ही। तो वो कहती है कि सन्निकर्षात तू सौ हरदम जायते स्थावरेश्वरी। देखो स्थावर योनियों में भी देखा जाता है कि निकट रहने से सौहार्द बढ़ता है। जब किसी वृक्ष के निकट में लता होती है तो उसको आलिंगन कर लेता है। देखी नहीं हो अपने भवन में भी देखो जब वृक्ष और लता निकट रहते हैं तो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और दूर रहते हैं तो कौन किसका आलिंगन करता है। निकट रहने से सौहार्द बढ़ता है। पहली भूल तो तुमने ये किया कि अपने पुत्र को हमेशा राजा से दूर रखा। तो स्वाभाविक उनका स्नेह राम के प्रति बढ़ गया और भरत से कम हो गया। आज भरत यहां होते तो जरूर राजा दशरथ चौथाई राज्य को उनको देते, पूरा राज राम को नहीं देते। ये तुम्हारी भूल है। तो स्थावर योनियों में भी निकट रहने से स्नेह बढ़ता है। ये होता है दृश्य का प्रभाव। और वास्तव में यह बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। मुखापेक्षिता इसको कहते हैं। इस संसार में देखा जाता है कोई आदमी किसी की चाहे कितना भी निंदा करे लेकिन सामने होने पर दूसरी बात नहीं है कि नहीं। और यदि निरंतर सामने रहा जाए मिला जाए तो सौहार्द बढ़ जाता है। तो यह दृश्य का प्रभाव होता है। इसीलिए अपनी चेतना को अपनी कृष्ण भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए वैष्णवों के संग में रहना चाहिए। उससे चेतना बनी रहेगी और विषयों का संग करने पर वैसा ही बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब मंदिर में आते हैं, मंदिर में भगवान से प्रेम करने की वासना बढ़ती है क्योंकि और लोगों को देखते हैं कि वो भी भक्त है। लेकिन परिवार में जाते हैं जब बच्चों को पत्नी को अपने सामने देखते हैं तो यही होता है इनको पोषना ही सबसे बड़ा धर्म। ये हो जाता है अगर भगवान ने मुझे गृहस्थ बनाया है, जिम्मेवारी दिया है तो ये करना हमारा धर्म। तुरंत चेतना प्रभावित होती है कि ये प्रत्येक भक्त के जीवन में देखी गई बात है, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में देखी गई बात है। तो इस तरह हमें रूप और शब्द से विशेष करके बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक रूप अपना असर छोड़ करके जाएगा और इस तरह से हम कमाते जाएंगे आंखों द्वारा और कान द्वारा। तो कान द्वारा भगवान की बात सुननी चाहिए और आंखों से भगवान को देखना चाहिए या उनको देखना चाहिए जो भगवान को देख रहे हैं, जिनके हृदय में कृष्ण हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। इन सब प्रसंगों से इतिहासों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक दृश्य देखने के कारण राजर्षि भरत अगर वो नदी के तट पर नहीं बैठे होते, कहीं दूसरी जगह बैठे होते जहां वो हरिणी को जल पीते हुए नहीं देखते तो मरी होती या बच्चा मरा होता उसके विषय में वो सोचते भी नहीं सपने में। लेकिन केवल उन्होंने देखा बस असर हो गए। गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहे थे, बहुत लोकपालों से अस्त्र प्राप्त किए, बहुत मनसूबा रखते थे एक दिन युद्ध होगा, लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और यहां तक कि जब युद्ध स्थल में हुए तो कृष्ण से कहते हैं कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने वाले कौन कौन लोग आए हुए। अभी भी रोष में बोल रहे थे भारत राष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकित्सक, उस दुर्बुद्धि धर्म राष्ट्र का हित करने वाले जो लोग आए हैं उनका चेहरा जरा दिखाई मैं देखना चाहता हूं। अभी भी लड़ने की उमंग में थे लेकिन जब रथ को खड़ा करके भगवान ने दिखाया कि देखो तुम्हारे मामा खड़ा है, वो तुम्हारे ये है वो है, उनका चेहरा देखते ही चित बदल गया, अनुकंपा से भर गया और अपनी जोशपूर्ण कही हुई बातों को अधर्म कहने लगे। हम लोग अधर्म कर रहे हैं मतलब महाराज युधिष्ठिर या कृष्ण सभी पाप करने जा रहे हैं, इतना चित बदल गया। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम जब राज्य सुख लोभ है ना अंतुम स्वजन विद्य। राज्य सुख के लोभ से हम लोग बंधुओं को मारने जा रहे हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम लोग महत पाप करने का निर्णय कर लिया है। किसी भी हालत में युद्ध ठीक नहीं, कितनी चेतना बदल गई। अभी 10 मिनट पहले जो कह रहे थे कि दिखाइए मैं उनका चेहरा देखना चाहता, मतलब बड़े बड़े वीर थे, किसके साथ कौन अस्त्र चलाऊंगा, कैसे लड़ना है मैं पहले से एस्टिमेट करूं। और वहां जाते ही और पूरा युद्ध छोड़कर भागने की चेष्टा करने लगे। ये है चेतना का प्रभाव, दृश्य का प्रभाव। सौहार्द उत्पन्न हो जाता है, ममता उत्पन्न हो जाती है। इसी से भक्ति में अनुकूल दृश्यों को देखना चाहिए। सामान्य बात नहीं है यह कहना कि हम कहीं भी भक्ति करें, कुछ भी करें, किसी का भी संग करें, नहीं कर पाएंगे किसी का संग करके। कृष्ण प्रेमियों का संग करेंगे तब कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। यह कृष्ण संबंध है पूर्ण, शब्द को सुनेंगे या रस कुछ खाएंगे तब हमारी चेतना वैसी रहेगी, नहीं तो तुरंत बदल जाएगी, तुरंत चेतना बदल जाती है। तो जब तक हृदय की सत सत भावनाएं भगवान की तरफ नहीं जाएंगी तब तक खतरा है। हम राजर्षि भरत का इतिहास यहां कह रहे हैं तो इसके द्वारा कहां क्या शिक्षा है, आचार्यों के लेखों से तात्पर्य से हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्होंने लिखा है कि इस तरह से दृश्य नहीं देखना चाहिए, जप कर रहे थे तो आंख बंद करके जप करना चाहिए, तो हरिणी को देखे बताए। जब एक पशु को देख करके ऐसी दया हो सकती है तो अपने पत्नी के गोद से जन्मे हुए बच्चे के प्रति कितनी ममता हो सकती है, उसके लिए आदमी कुछ भी सोच सकता है। और आदर्शी भरत का भजन भी छूटा तो वे उसमें दोष बुद्धि नहीं किए। वे कहते हैं कि ऐसे स्वार्थ के लिए बड़े बड़े लोग इस तरह भगवत भजन आदि छोड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें आभास हो रहा था कि मैं नियम छोड़ रहा हूं। अच्छा, अब देखिए राजर्षि भरत उसको लेकर अपने आश्रम में आए। पहले एकाकी वन में थे, अब एक पुत्र आ गया। इसमें पुत्र बुद्धि उनकी हो जाएगी तुरंत। तस्य हवा एण कुणके उच्च ये तस्मिन कृत निजाभिमानस्य। पहले आपने सुना था कि उच्च स्तर भक्ति हजाय था, भगवान कृष्ण में उनकी बहुत ऊंची भक्ति हो गई। और इस एण कुणक में, कुणक माने बच्चा, इस हरिण बच्चा में उनकी बहुत उच्च ही निजाभिमान हो गया। निजाभिमान हो गया कि यह मेरा है, यह साधारण अभिमति नहीं हुई, बहुत उच्च मति हो गई, गाढ़ कि यह मेरा है। और मन ही मन विचार करते थे कि यह मेरा है, मैं इसका पिता हूं, इसकी मां हूं, इसका भाई हूं, गुरु हूं, सब कुछ इसका हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान मेरे ही सामने इसको स्रोत में क्यों बहाते। अब देखिए ये तो काल के धारा में हम लोग भी बह रहे हैं, काल नदी में बह रहे हैं। और कदाचित कोई हमारा पुत्र बनकर आ गया या पत्नी बनकर आ गई, भाई बनकर आ गया, तो हम लोग सोचते हैं हमारा ये संबंध नित्य है, मैं इसका ये हूं, मैं इसका यह हूं, मैं इसका यह हूं। और हम लोग कृष्ण को भूल करके केवल इन्हीं बातों को सोचने लगते हैं। इसको उच्च ही कृत निजाभिमान कहें, निजाभिमान हमारा है ऐसी मति, और बहुत गाढ़ मति हो गई। ह शब्द यहाँ ह वाई, तो ह का अर्थ है कि इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के जीवन में भी विघ्न आ गया है। महाराज परीक्षित से खेद प्रकट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हाँ, इतना प्रयास राज छोड़ करके भक्ति में लगे हुए व्यक्ति में भी विघ्न आ गया। और वही वही स्मरण में है राजा जी, आप भी राजा हैं, जरा स्मरण करके देखिए क्या हो गया उनके जीवन में। ये तस्मिन एण कुण के, ये तस्मिन का अर्थ है कि इस हरिण बालक में लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल राजा भरत के साथ हैं। तो इस हरिण बालक में, ये तस्मिन एण कुण के उच्च कृता कृत निजाभिमान कृतो निज स्वीय इति अभिमान जैन तस्य, यह हमारा है यह अभिमति उत्पन्न हो गई। और जब इस प्रकार की मति हुई तो जिन ही आश्रम में ले गए तेन ही अब उसके भोजन की व्यवस्था में लग गए। तो जन्म हुआ तब तत्काल यदि मां होती तो उसका स्तन पिया होता है, दूध पिया होता है, लेकिन आश्रम में लाए तो अब तो कोई न कोई जन्म घूंटी चाहिए या नरिशमेंट के लिए कोई बोतल चाहिए बच्चे के लिए, कुछ न कुछ उसको पोषने के लिए सामान चाहिए। अभी तो तत्काल में वो अपनी माँ का दूध पीता, लेकिन दूध तो उसके कंठ में गया नहीं, और इनको अभिमान हो ही गया कि ये मेरा है। जिस समय भगवान की पूजा का काल था, आराधना का काल था, उस समय वे हरिण के भोजन जुटाने में लग गए। अब उसको सहलाते थे, भोजन जुटाते थे, कई प्रकार के कार्य करने लगे। उच्च तस्मिन कृत निजाभिमानस्य अह अह तत्पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियम सहजम पुरुष परिचर्या दय एक कतिपयेन अहरगणेन विजमान की सर्व एवं उद्वसन। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, इसलिए ह शब्द का प्रयोग करते हैं। ह खेदे, खेद में हाय, यह शब्द जो हाय के अर्थ में हाय। इस एड़ कुणक में हरिण सावक में उच्च कृत निजाभिमान से उनका बहुत गाढ़ अभिनिवेश हो गया कि यह मेरा है, इसलिए अह 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 मतलब दिन निशा बन रहा है, अहर निशरात दिन, तो अह अह प्रतिदिन अनवरत इसका अर्थ है। तत्पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्याने, पहले आपने सुना था कि इन्हें भगवान कृष्ण का अनुध्यान रहता था, निज रमण चरणार बिंदानुध्यान, निज रमण अरुण चरणार बिंदानुध्यान, और अब क्या अनुध्यान रहने लगा, तत्पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यान। पोषण का अर्थ पुष्ट करना, हरिण को पुष्ट करने के लिए तृणादिना तृण आदि से पोषण करते थे, उसको पुष्ट करना चाहते, बढ़ाना चाहते। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भोजन देते हैं, खिलाते हैं, तो बढ़ेगा, सुखी होगा, तो तृण का ध्यान करते थे हमेशा कि कहाँ अच्छी घास मिलेगी, वहां से लाना है, इस बच्चे को खिलाना है या ले जाना है चरने के लिए, इसको अपनी गोद में टांग करके वो ले जाते थे। और वो भी ऐसा चिपक गया राजर्षि से, उसका तो कोई था नहीं वास्तव में, वो तो असहाय था, तो उन्हीं की गोद में रहना चाहता था, उनसे सटना चाहता था, सिंह से खुलाता था, और सब विश्वस्त था वास्तव में कि हमारे पोषक हैं, पालक हैं, अपने समाज से बिछुड़ चुका था, अपनी मां से भी, तो पोषण करते थे। पोषण का ध्यान तृणादिन पोषण, और पालन, पालन का अर्थ रक्षा, ब्रिका दिव्यो रक्षण, बाघ सिंह भेड़िया आदि से रक्षा के लिए हमेशा सोचते रहते। अब उनका ध्यान और पूजा पाठ सब धीरे धीरे छूटने लगा, अब भगवान से मति स्खलित हो गई, अब हरिण में लग गई, तो पालन की चिंता करते थे, रात में भी दिन में भी हमेशा चिंतित रहते थे, कहीं भेड़िया इसको न खा जाए, कोई कुत्ता आकर के न खा जाए, बाघ सिंह भालू आदि न अचका करके खा रहे, तो रक्षा करते, तो पालन करते। और लालन पोषण पालन लालन, लालन का अर्थ चुंबन आदि करना, उसको चुमना, और प्रीणन का अर्थ है उसको प्रसन्न करना, खुजलाना, घंटों घंटे उसको खुजलाया करते थे। ये करता हो बच्चों को पोषण देना चाहिए, उनका पालन भी करना चाहिए, लालन करना चाहिए, लेकिन हमेशा कंधे पर टांग कर घूमना नहीं चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है, उससे बच्चा कोई बहुत अच्छा बनेगा ये बात नहीं। कुछ लोग इसमें आसक्त होते हैं, हमेशा अपने बच्चे को लेकर के चलते हैं गोद में ही या इधर उधर, तो मैं ऐसा कर्कश विचार नहीं दे रहा हूं कि बच्चों को गोद में नहीं रखना चाहिए, लेकिन सब समय नहीं रखना चाहिए, भगवान के पूजा पाठ भजन के समय बिल्कुल विदित रहना चाहिए, तो दूसरे की व्यवस्था में डालना चाहिए कि तुम इसको देखो और मुझे भजन करने। और तो चुंबन करना या उत्संग में गोद में लेना और उत्तोलन करना, कभी कोई हरिण बच्चा को लेकर ऊपर उत्तोलन करते, जैसे हम लोग बच्चे को लेकर ऐसे करते हैं, कहाँ गया भजन और ध्यान और तुलसी दल जुटाना, कंद मूल फल जुटाना और नाना किसलय, नाना कुसुम किसलय सब गया। हरिण में पूरी पूरी मति लग गई। ये कुछ दिन के बाद हुआ, पहले ही दिन नहीं हुआ, लेकिन दिन पर दिन आसक्ति बढ़ती गई। तो पोषण घास आदि द्वारा, पालन बाघ आदि से, लालन गोद में या हाथ में लेकर उत्तोलन करने से और चुंबन से, और प्रीणम कंडुयन आदि न करस्पर्श। पशु बहुत प्रसन्न होते हैं यदि उनको कंडुयन किया जाता है, खुजलाया जाता है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आकर के अपनी गर्दन सटा देते हैं कि हमको खुजलाओ, है ना। पशुओं में भी प्रेम होता है। अब तो सब लोग केवल कुत्तों को खुजला रहे हैं और धो रहे हैं, अब तो उनकी क्या गति होगी। इस तरह से सत्य है। तो राजर्षि भरत इस तरह पोषण पालन लालन प्रीणन के अनुध्यान, मतलब निरंतर ध्यान में रहते थे। अनुध्यानम का अर्थ है पुनः पुनः चिंतनम, अनुध्यान निरंतर ध्यान, बार बार उसी का चिंतन, बार बार उसी का चिंतन करते थे। क्या इस चिंतन के बिना उस बच्चे का पालन नहीं हो सकता था? हो सकता था। आदमी चिंतन जो करता है वो फालतू करता है, चिंतन से वो बच्चा पुष्ट नहीं होगा। उसको कुछ खिलाने से पुष्ट होगा या रक्षा करने पर उसकी रक्षा हो, लेकिन मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो चिंतन करता रहता है, चिंतन करता रहता है। तो अनुचिंतन काल से पुनः पुनः चिंतन, और सब चीज का चिंतन करते थे। कभी कभी मन ही मन सोचते थे उसको खुजला रहा हूं, उसके लिए घास जुटा रहा हूं, उसके पास आए हुए बाघ को हटा रहा हूं। जागृत स्वप्न सब समय ऐसा सोचते रहते। इसके कारण क्या हुआ कि सह जमा आत्मनियम, आत्मनियम का अर्थ उनके जो नियम थे अपने भक्ति के नियम, जैसे स्नान करना, संध्या करना, जप करना, ये सब और पूजा करना, इसके साथ ही साथ सह यम, यम जो नहीं करने लायक काम।